अब देखे कि मैं अपने दिन से सोच रही थी कि शायद हम सब भी ऐसे सोच रहे हों कि अम्मा जी तो बूढ़ी हैं, इनको तो कोई काम नहीं है, ना बच्चों को स्कूल भेजना है, ना शौहर की कोई जिम्मेदारियां। जहन में आ रहा था आप लोगों के ये कि इन्होंने कुरान नहीं पढ़ना तो और क्या करना है? दिल में आता है सवाल। हम कहते हैं ये वेले लोग हैं, जैसे कुछ लोग मुझे भी कहते हैं इन्होंने पढ़ाना नहीं तो और क्या करना है, है? लेकिन मैं अपने सोच से सोच रही थी कि हर उम्र की रुकावटें फ़र्क होती है ना। जैसे यंग बच्चियां अगर वो अल्लाह के कलाम की तरफ आती हैं तो उनको अपनी तालीम का कुछ हर्ज करना पड़ता है। फिर इसी तरह नींद बड़ी प्यारी होती है जवानी में, वो छोड़नी मुश्किल लगती है। दोस्त सहेलियां पार्टियां रातें जो आते हैं वो इस पे सब्र करके आते हैं। जब हमारी वीकेंड की क्लास में दोनों दिन बच्चियां आती हैं तो मुझे यकीन है कि वो 50% पार्टियां दावतों में नहीं शाम को जाती होंगी, कि बंदे का मूड ही चेंज हो जाता है ना सुबह उठ के आप जब इतना अच्छा सोच लेते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इंसान बड़ा होता है, शादी शुरू की है तो फिर रुकावट ये होती है कि शादी हो गई है, हस्बैंड है, ससुराल, नया नया घर है, अभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। फिर एक बच्चा हो जाए तो वो रुकावटों का हमारे ख्याल में एक अंबार शुरू हो जाता है ना। फिर दो बच्चे, फिर बच्चों वाले तो हमेशा यही अपने ऊपर अहम खा रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हैं। हालांकि मैं सोचती हूँ पहले आप अकेले थे, अब तो आपके साथ दो चार लोग हैं। मैंने बच्चों को भी चीज़ें उठा के चलते देखा है, वो साथ मदद करते हैं। बच्चों को अगर आप साथ चले तो आपके बाजू बन जाते हैं। तो खैर किस्सा मुख्तसर, फिर होते होते एक वो वक्त आता है जिसमें अम्मा जी हैं। इस उम्र में किस चीज़ से मुकाबला करके एक इंसान आता है? बुढ़ापा अपनी जगह खुद बीमारी है। अल्लाह ताला कहते हैं आप क्या वो सूरह यासीन की आयत है कि नक्किस खुफिल खल्की, क्या हम इंसान की तख्लीक को फिर नहीं बदल देते? कमज़ोरी, बुढ़ापा, बीमारियां, है ना, किसी का सहारा लेके आना, अकेले गाड़ी तक आना ही मुश्किल है, सीढ़ियों से ऊपर आना के लिए मुश्किल है। ये रुकावटें सोचे ना, तो मैं इसको अपने ऊपर इस तरह लेके सोचती हूँ कि अगर जवानी में मेरे पास उजर है, मिसाल है बच्चा है, तो बच्चे ने तो खुद चल पड़ना। जब मेरे अपने वजूद के अंदर इतनी कमजोरियां लग जाएंगी तो क्या मैं अम्मा की तरह आऊंगी? यकीन करें मैं अपने ऊपर लेके इसको सोचती हूँ, और हम में से हर एक को ये सोचना है। आज भी अगर हम किसी मजबूरी के नाम पर घर बैठ जाते हैं और बैठे हुए हैं तो आप याद रखें बुढ़ापे में क्या बनेगा। ये जो बुढ़ापा है ना, ये ततिम्मा होता है जिंदगी का। क्यों अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी लंबी उम्र हुई और उसको अच्छे अमल करने की तौफीक मिली वो कामयाब है। बड़ी उम्र में भी लोग अच्छे काम कोई नहीं करते जब तक अल्लाह ताला ना तौफीक दे। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि खात्मा बिल खैर, अब इस अम्मा की जिंदगी तो सादी से ही होगी जो मेरा अपना गुमान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिंदगी में उन्होंने भरपूर याशियां की, जो कर सकते थे वो किया, राइट। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ, फिर अल्लाह ने लंबी उम्र दी, फिर बुढ़ापे में उन्होंने अपने कफारे कर लिए, अपने गुनाहों की माफियां मांग ली, और एक वक्त आया कि अल्लाह ने फिर उनको सुरखरू कर दिया। तो अपना बुढ़ापा हम सब सोचें, और मैं सोचती हूँ कि इस अम्मा का आना और इनको अल्लाह ही लेके आता है, ये हम सब के लिए मोटिवेशन है। तो आज के बाद कभी कोई ये दिल में भी ख्याल ना लाए कि इनकी क्या मजबूरी है, इनकी मजबूरी जान की मजबूरी है। आपको एक दिन बुखार हो तो आप कमजोरी फील करते हैं ना, तो बुढ़ापा तो खुद बीमारी है। अल्लाह ताला कहते हैं दोफ अनला दोफ, प्रेगनेंसी में जो दोफ का लफ्ज आया ना कुरान में, हामिला औरत के लिए बुढ़ापे में वही होती है। ज़ईफी को दईफी ही कहते हैं अरबी में, तो वो कमजोरी है अपनी जगह। तो अम्मा आप तो कम अज कम मेरे लिए तो बड़ी दुआ किया करें कि अल्लाह आपकी तरह अगर मुझे जिंदगी दे ना तो मुझे आखिरी दिन भी मैं इधर से जाऊं, मेरी इधर से ही मेरा जनाजा जाए। क्यों? कि जिस दिन मुझे पता है मैं घर बैठ गई उस दिन मैं वक्त से पहले मर जाऊंगी। और ये चीज़ इस दुनिया में रहते हुए कम ही समझ आती है। मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरे दिल में दिमाग में हर वक्त ये सवाल जवाब उठते ही रहते हैं, फलां क्यों नहीं आता, फलां की क्या रुकावट है, फलां की क्या पाबंदी है, उसको क्या मसला क्या है। और मसला फिर वही है कि कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। हम सोचते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, हमारे अपने काम बड़े। आप कभी पब्लिकली बात तो करके देखें अपनी इस क्लास की, ऐसा टके का जवाब आपको मिलेगा, आप शर्मिंदा होके पलटेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे लगता है शायद आपने किसी की वो बड़ी पर्सनल जिंदगी में को पत्थर मार दिया। क्या जरूरत है जी, करते हैं जी नमाजें, हम भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे हैं जी, हांडी पकानी होती है। ये टोन क्या है? ये टोन यही है कि हमें इस चीज की परवाह नहीं, सब कुछ करना है सिवाय इसके। वो एक दफा एक फरिश्ता था, तो उसने इंसानी रूप में किसी जगह जाकर देखा कि एक आदमी दुआएं मांग रहा है। तो इसको देखकर कहता है, वो आदमी कहता है कि तुम बड़े नेक बंदे लगते हो, तो तुम मेरे लिए दुआ करो। तो ये जो फरिश्ता था असल में, लेकिन इंसान के रूप में था, कहने लगा कि बताओ क्या मांगू। तो वो शुरू हो गया, ये भी मांगो, वो भी मांगो, ये भी मांगो, यानी जो दी चीजें थी उसने मांगी। बाद में ये कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी चीजें कही हैं, तुम लिख तो रहे नहीं हो, तो तुम्हें याद कैसे रहेगा। तो अब कहता है, उसने क्या जवाब दिया? कहता, फिक्र ना करो, मुझे सब याद रहेगा। भाई क्या कहोगे तुम दुआ में? कहता, मैं कहूंगा अल्लाह तेरे इस बंदे को तेरे सिवा सब कुछ चाहिए। इज इट ट्रू? ये सच है। कभी बैठ के ना अपने जिंदगी की चीजों की लिस्ट बना के देखें। और ये जो थोड़ा सा वक्त है, देखिए इबादत तो 1 घंटे की, सारे दिन के अंदर हम कर लें तो बड़ी बात है, हमारे फर्ज जमा करके 1 घंटा पूरा हो जाए बड़ी बात है, वो भी कोई बड़े अच्छे दिल से की होंगी तो होगी। लेकिन कभी आप सोचें इस बात को, 24 घंटे उस मालिक की नेमते लेते हैं। मुझे खिड़की इतनी अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ मैं और मेरी खिड़की, मैं रात को कर्टन भी नहीं आगे करती, अंधेरा होता है बाहर क्या दिखेगा। तो मैं रात को जब करवट पलटती है, जब आंख खुलती है सोते के वक्त, रात में उठें, सुबह उठो, मैं बदलते आसमान देखती हूँ। वल्लाह ही मैंने अपने रब को ऐसे पाया है, मैं कहती हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं ओपन एयर में सोऊं। मैं सोचती हूँ मालिक तू है क्या, तेरी कुदरत कितनी बड़ी है, तू इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाता है। अभी ये खिड़की नीली थी, अब ये सुरमई हो गई, अब ऑरेंज हो गई है, अब ये काली हो जाएगी, फिर सुबह नीली हो जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां तू मालिक ले आता है, तो क्या हम तेरी इस नेमत की वैल्यू नहीं करते? जिस तरह अल्लाह ताला यहां कर रहा है ना, इसी तरह हमारी जाती जिंदगी में भी करता है। तो उस मालिक की दी हुई शरीयत है जिसके बारे में मैं और आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये छोटी चीज नहीं है, ये किसी की कोई मिथ नहीं है, ये कोई नजरिया नहीं है, ये कोई थेरी नहीं है, ये वल्ला ही अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरे मालिक की चीजें हैं जिसने हम सबके लिए इन चीजों को सामने रख दिया। तो जरूरत इस बात की कि हम अपनी इस चीज को समझें। किसने बगैर छुट्टी के पूरी सीरीज अटेंड की है जिसके आज आखिरी सीढ़ी पे खड़े हैं? आपने की है, आपने की है, फायदा हुआ? कुरान तो आप पहले पढ़े हुए थे, हदीस भी पढ़ ली, क्या फायदा हुआ आपको?
ये सारी वही चीजें थी जो हमने कुरान पाक में पढ़ी हुई हैं, तो दोबारा से एक रिमाइंडर भी मिला है, और साथ ही इसका ये कि हिकमत से भी जैसा कि सिखाया गया है, तो इससे मैं बहुत ज्यादा अपने आप को यानी कि बहुत खुशकिस्मत फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई ऐसी चीज होती है कि जिंदगी में कुछ ऐसा मामला होता है तो मुझे और भी अच्छी तरह से करना आ गया। जैसे पहले अगर कुरान में पढ़ा हो कि सबर करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, तो वो सिर्फ यही है कि करना चाहिए, लेकिन अब पता चल गया कि कैसे करना है, और इसमें भी हिकमतें सिखाई गई हैं कि कैसे नहीं कर सकते, कैसे करेंगे तो फायदा होगा, कैसे नहीं करें, अगर इसको ज्यादा कर देंगे तो इसका नहीं फायदा, अगर कम करेंगे फिर भी नहीं फायदा, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक इस तरह इस हाल में करेंगे तो फिर फायदेमंद है।
जी जजाकल्ला खैर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे इससे फिर खाने पीने की मिसाल याद आ गई कि जब हाथ चल जाता है ना खाना पकाने पे, तो नापना नहीं पड़ता, तोलना नहीं पड़ता, अंदाजों से चावल पक जाते हैं। और फिर आपको पता होता है इतने चावलों में इतना नमक, इसको ज़रा प्याज को ज़्यादा सुरख कर दिया तो काले हो जाएंगे, कम किया तो सफ़ेद रहेंगे, करते हैं ना। तो हाथ चल जाता है ना, तो ये जो बार बार की तहे लगती है ना, ये आपका दीन में हाथ चल जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि आपको दीन का मिजाज समझ आने लगता है। और एक दफा कुरान पढ़ना तो ऐसे ही है कि आपने कहीं एक रेसिपी देख ली, आपको किसी ने बता दी जी ये लज़ानिया ऐसे बनाते हैं, तो वो तो पता तो लग गया, लेकिन आपको पता है कि पहली दफा के कुरान के बाद बंदा हर वक्त उसे फायदा नहीं हासिल कर पाता, टाइम लगता है उसमें ना। लेकिन जब आप रोज बना लें, हर महीने में या हफ्ते में एक बार बना लें, तो आपको बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि वफी जालिक फल जता ना फसिल मुतनाफिस। अगर दौड़ लगानी है, अगर एक्सीलेंसी लेनी है, अगर परफेक्शनिस्ट बनना है, इसमें बने। वफी जालिक ये है वो मैदान जिस पे लगाया हुआ वक्त, माल, एफर्ट, कोशिश, वल्लाह ही कभी रहेगा नहीं जाती। ये मालिक का एक इनाम है, ये उसका एक तोहफा है। और ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, हर एक को नहीं अल्लाह ये देता, हर बंदा हर जगह नहीं जाके बिठा दिया जाता। आप ये ना सोचा करें कि फलां फलां क्यों नहीं आता, इस शहर में तो शायद 10,000 खवातीन होंगी, तो उसमें से हम 10 क्यों आती हैं, मिसाल है। ये ना सोचा करें, आप इसको अपोजिट सोचा करें, 10,000 में से हम 10 को अल्लाह ने चुना है। और यकीन करें कि आप देखेंगे कि जब आप अकेले में बैठ के अपना उजर ढूंढते हैं ना, तो अंदर कहीं ना कहीं खाने में जगह गुंजाइश मौजूद होती है। होती है कि नहीं होती? ये सिर्फ एक हमारी अपनी बात होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, देख लेते हैं, कुछ नहीं होता।
अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को बेहतरीन उम्मत कहा है। मैं ये सोचती थी कि ये हमारे लिए फख्र की बात है कि नहीं, बेहतरीन उम्मत है। यानी हक के लिए निकलना, लोगों को तबलीग करना, नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, तो बेहतरीन उम्मत। उसके बाद क्यों किया कि ये ओहदा मिला है, तो किसी कोई भी ओहदा हासिल करने के लिए उसके मेहनत करनी पड़ती है। हम बाहर निकलेंगे तो ये हम हक अदा कर सकते, हम दीन की खातिर जम जाएंगे कि जगह, तो ये हम हक अदा कर सकेंगे। वरना अल्लाह ताला ने तो हमें भी नहीं छोड़ना। हम तो ठीक है, हमारे पास दीन आ गया, हमारे लिए भी अल्लाह ने सोचा कि
हमारी
मतलब
पकड़ ज्यादा है।
ज्यादा है, तो मैं कि
हम
सबके पास
सोचते हैं कि
है।
हम पढ़ के बच जाते हैं, हमारी तो पकड़ ही ज्यादा है क्योंकि नेमत ज्यादा है। पकड़ से मुराद ये नहीं कि अल्लाह मारेगा, लेकिन अल्लाह पूछेगा नेमत का हक कितना दिया है, राइट? तो ये जिम्मेदारियां आप देखिए, सिंपल सी बात है, बड़ी आधे बोल में समझ आने वाली बात है। 5 साल डॉक्टर बनने के बाद जो मर्द घर बैठ जाए, लोग उसको क्या कहेंगे? 6 साल वकालत पढ़ने के बाद कोई वकील बन के घर बैठ जाए, क्या कहेंगे आप उसको? लोग कहेंगे ना खट्टू। कोई 10 साल तक बिजनेस सीखे और घर बैठ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ आप भी कुछ बनने आते हैं। मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता कि कोई ये सोचे मैं 1 या 2 साल पढ़ के फारिग, ये तो वो ही है डॉक्टर बन के फारिग। ये फारिग नहीं होता बंदा। जी सोभी,
सर जी, अगर कोई ऐसा करे ना, जैसा कि आपने मिसाल दी, डॉक्टर बन के या वकील बन के घर बैठे, तो उसको लोग कहते हैं कि ये पास ही नहीं हुआ था, इसके पास कोई
जी
डिग्री नहीं है,
बड़ी अच्छी बात है कि वो तो पास ही नहीं हुआ था, ये निकम्मा ही होगा, ये फेल ही हुआ है, तभी तो आज इसको कहीं जॉब नहीं मिल रही। और मैंने धक्के खाते देखा है लोगों को, 10 10 साल पढ़ने के बाद अभी अच्छी जॉब ही नहीं मिलती। फिर आप देखिए, हाउस जॉब नहीं कराते डॉक्टर बनाकर, ये आपकी हाउस जॉब ही तो होती है, जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको इधर बिठा उधर बिठा, ये कर वो कर, इधर जा उधर जा, क्यों? क्योंकि आपकी ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं, राइट? जी
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि जब बंदे को आखिरत की फिक्र लग जाती है ना, तो फिर वो चैन से नहीं बैठता घर में जाना, फिर उसको जाना हर दिन जाना, वो एक रगन लग जाती है कि मैंने अपने रब के करीब होना है, मैंने शैतान से दूर होना है। और मैं कैसे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ये कहूँगी कि घर बैठ के हम पढ़ते ना, तो हमें कुछ नहीं समझ आनी थी उस तरह, जिस तरह हमें उस्ताद जी ने समझाया।
जी आपको 6 माह पहले दे के
जी
गई थी बुक, कितनों ने पढ़ी थी?
किसी ने भी नहीं पढ़ी मेरा
ये
ख्याल
तो मैं
में।
आपको पिछले ट्रिप में दे के गई थी।
जी
तो पढ़ता है कोई?
जी
अभी भी जो रह गए सब वो पढ़ के आए हैं, वो कई तो किताब इधर छोड़ जाते हैं, हैं पढ़ाकू बच्चे।
तो उस्ताद जो है ना, वो ये कि सिर्फ बुक्स पढ़ाते नहीं है, वो तरबियत भी करते हैं, और उनकी कैफियत भी बंदा जो है ना जज्ब करता है। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी इबादत में, नमाजों में काफी फर्क आया अल्हम्दुलिल्लाह, खुशू और खुदू, और अल्लाह सुबहान तआला के करीब भी जाना अपने आप को महसूस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जाना। और बंदों के साथ तो मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को भी चेक किया कि मेरा इस तरह नहीं है कि किसी के मुझे मैं अपना मुहासबा किया कि किसी के साथ मेरे ताल्लुकात बिगड़े हों। तो सबके साथ प्यार मोहब्बत से घर में भी और बाहर भी जाना, अल्लाह करे कि सबको ही जाना ये लगन लगा दे इलम की और सभी इस तरफ आ जाए। यहाँ पे तो नॉर्वे में तो बहुत ज़रूरत है यूरोप में जाना। मैं कहती हूँ कि हम लेट आए हैं, हमें बहुत ही वो पछतावा है क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह का उस्ताद नहीं था जो हमें पढ़ाने वाला जाना। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ले आया है, उसने चुना है हमें। लेकिन जो जो यंग लोग हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इस तरफ आ गए, कुरान जिन्होंने शुरू किया अपने बच्चों की, वो मैं कहती हूँ कि शुरू से ही तरबियत करें, ऐसे कुरान के साथ ही करें जैसे कि कुरान के जाना अल्लाह सुब्हान तआला ने हुक्म दिया, और ये अमल भी साथ साथ जाना करें। इस बुक से हमें ये भी पता चला कि दीन सिर्फ जाना ईमान का नाम नहीं, अमल का नाम भी है जाना, ये साथ साथ अमल करना है।
इंशाल्लाह जी आपकी जी नसीब जी। वालेकुम अस्सलाम
जी। उस्ताद जी ये किताब के बारे में ही बात करूंगी क्योंकि आप दे के गई थी तो हमने पढ़ी भी होती तो हमें इस तरह नहीं समझ आ रही थी जैसे आपने पढ़ा दी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी अरकान किसी से बात करो ये किताब के बारे में कि ये सीख रहे हैं, तो मेरे समेत मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ये कहती कि ये चीजें तो हमें पहले से ही पता है, बचपन से ही पता है। लेकिन
एक सिस्टर आई थी कोई शुरू में, कोई एक आया था मुझे याद है किसी का, आप में से किसी ने मुझे सुनाया तो उन्होंने कहा ये बातें तो मुझे पहले ही पता।
हाँ जी मैं ये कह रही हूँ कि कुरान पढ़ के जितना ज्यादा पता चला था वो तो हमने स्कूलों कॉलेजों में इस तरह नहीं पढ़ी थी जो हम कहते हैं कि हमें पहले से ही पता है। जब कुरान पढ़ के भी दोबारा हमें इन बातों की ज्यादा समझ आई है तो जिसने कुरान को सीखा ही इस तरीके से जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया तो वो कैसे कह सकता है कि पता। और ये तो ही तो ऐसी चीज है, ये बुनियाद ऐसी है कि सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत दे के तो बंदा ये कह नहीं सकता कि मैं तो बस पक्की मुसलमान बन गई, बल्कि उसके कुछ तकाजे हैं वो पूरे कैसे होंगे हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जैसे एक रिमाइंडर के तौर पे इस किताब ने दोबारा से हमें झंझोड़ा है कि मुझे समझ आती कि अल्लाह तआला ने क्यों कुरान में बार बार कुछ वाकियात को बार बार बयान किया और कुछ बातों को मुख्तलिफ मिसालों से। हम इंसान अब भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं या ईमान में कमी आने लगती है, दुनिया दरमियान में आती है, कुछ भी बन जाता है वजह। तो इस किताब से तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो तकाजे किस तरह पूरे करते हैं वो हमें नए सिरे से पता चला कि अपने आप को हम चेक करें, एक टेस्ट है एक हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें रास्ते भी मिल गए, तरीके भी, सब कुछ के कैसे करना है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि ये कि कोई इसको मामूली ना समझ के छोड़े और इसके साथ ही पता चलेगा कि क्या है कुरान, कुरान हमें क्या बताता है। बंदे को एक रवाजी मुसलमान पैदाशी मुसलमान से उठा के पूरी मुसलमान बना दे और अल्लाह के साथ जोड़ दे, इससे बड़ी और क्या बात है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए ये चीजें जरूरी है।
सही कह रहे हैं। तो जी आप साहब मैं बस अब आप बात कीजिए।
साजी बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जिस तरह शुरू से, बाकी जेल में इतना ज़्यादा नहीं था कि ये किताब ऐसी होगी ना, मगर एक नुक्ता है जहाँ पे कल से मेरा जिसको कहते हैं कि वो ठहर गया और बस जैसे अटक गई हूँ उसके साथ ही ना, कि वो यही जुमला था कि अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि अगर तुम ये काम करने के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तकलीफ के अजाब में मुबतला करेगा और फिर तुम्हारी जगह उन लोगों को पैदा करेगा जो उसके पूरे फरमाबरदार होंगे ना। तो इस चीज पे आके जैसे मेरा बहुत ठहर गया सब कुछ ना कि मेरे ना निकलने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे से बेहतर लोग होंगे जो इस काम को अल्लाह के दिन काम को करेंगे, मगर मेरा अपना हिस्सा भी कहीं नहीं रहेगा और पीछे हटने की वजह भी समझ नहीं आएगी। तो बस एक इस चीज के गिर्द कल से मेरा बहुत ज्यादा।
सही बात है, हम में से कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं है ये याद रखिए, और हम कोई अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे, ये अल्लाह का हम पे एहसान है। वो सूरत हुजरात में आता है ना कि अल्लाह पे अपने इस्लाम का एहसान ना जुतलाओ, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान के रास्ते दिखा दिए। तो आए थोड़ा सा पढ़ते हैं मज़ीद, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स हैं आज के भी, अल्लाह ताला हमें इनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो गेस्ट हैं वो सिर्फ सुन भी लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा, नहीं तो आप लोग सदका करें, बुक्स शेयर करें, एक एक लाइन पे एक एक बुक दे दें और उसको देख के साथ साथ चलते हैं।